नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आशीष कुंद्रा को एसपी शशांक के स्थान पर मिजोरम का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान गज और तेज, इसके तमिलनाडु के नागपट्टिनम में आज शाम तक पहुंचने का अनुमान। जम्मू कश्मीर सरकार का राज्य के बाहर उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की मदद के लिए 10 प्रमुख शहरों में जनसंपर्क अधिकारी तैनात करने का फैसला। श्रीलंका की संसद में सदस्यों के बीच झड़पें हुई, अध्यक्ष बिना किसी घोषणा के सदन से बाहर चले गए। और आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के 2020 मुकाबले में आज रात भारत का आयरलैंड के साथ मैच। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। निर्वाचन आयोग ने आशीष कुंद्रा को मिजोरम का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें श्री एसपी शशांक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। श्री कुंद्रा इस समय मिजोरम सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं।
सत्तारूढ़ पक्ष के नेताओं ने कल कई स्थानों पर चुनाव सभाओं में विश्वास जताया कि उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। हालांकि कल कांग्रेस के प्रवक्ता लालिन चुंगा ने चुनाव परिणामों के बाद खरीद फरोख्त की आशंका जताई थी। इस बीच विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी और जोरम पीपल्स मूवमेंट दलों ने राज्य में वास्तविक विकास लाने के लिए बदलाव की वकालत की। आइजोल से आयरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
विधानसभा के 40 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान इस महीने की 28 तारीख को होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी राज्य के विभिन्न इलाकों में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस चरण में 1148 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। रायपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद लगभग समाप्त होने को है। उन्होंने कहा कि देश के 90 जिलों में से केवल 10 या 11 जिलों में ही ये समस्या रह गई है। श्री सिंह ने उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को पुनर्वास नीति के फायदे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्ण अधिवेशन से पहले आसियान के 10 देशों और भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान अनौपचारिक बातचीत की। उद्घाटन भाषण में अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्ष सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने बताया कि सभी नेताओं के बीच अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने इस बात को दोहराया कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के प्रासंगिक बने रहने और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सभी स्तर पर विश्वास बनाना जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आसियान भारत अनौपचारिक सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बाद में श्री मोदी भारत के 20 एनसीसी कैडेट से मिले। कैडेटों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सिंगापुर गए इन कैडेटों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने यादगार अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने भारत सिंगापुर हैकेथॉन टीम के विजेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
भाई सुनो, अपने शहर को 7 स्टार बनाना है।
मतलब
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हर शहर के लिए 7 स्टार प्रोग्राम का नियोजन किया है और इसके अंतर्गत कुछ शर्तें हैं जिसके बिना पर हर शहर को स्टार मिलेंगे। ये शर्तें हैं घर घर से कूड़ा इकट्ठा होना, गीले सूखे कचरे को अलग करना, सफाई, कचरे का वैज्ञानिक उपचार, प्लास्टिक का कचरा प्रबंधन आदि। पर हाँ, यदि आपके यहाँ खुले में शौच हुई तो 3 या उससे ऊपर स्टार नहीं मिलेंगे। तो अब शहर को स्वच्छता की ओर ले जाओ और अपने शहर की स्टार रेटिंग हर साल बढ़ाओ। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में समुद्री तूफान गज और तेज हो गया है। इसने बड़े तूफान का रूप ले लिया है। ये तमिलनाडु में नागपट्टिनम के नजदीक पहुंच रहा है, जहां आज शाम तक या रात तक तट को पार कर लेगा। इस तूफान के असर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। गज के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी में ज्यादातर स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि कडलूर, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, तूतीकोरिन और रामनाथपुरम जिले में बहुत भारी 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है।
तूफान के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने के साथ राज्य सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से कहा है कि बिजली का संकट होने की स्थिति में अपने पास उचित मात्रा में डीजल का स्टॉक रखें। 6 जिलों में स्कूलों को आज बंद रखा गया है और परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। तटीय और निचले इलाकों से मछुआरों को दूसरे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के जल्द ही तट को पार करने की संभावना है, उसके बाद एक दिन में कमजोर पड़कर ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
केरल में शबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर सहमति बनाने के लिए तिरुवनंतपुरम में सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाली सभी महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए और समय की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे बदलाव के दूत बने और किसानों के साथ सहयोग करें। बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा में डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि विद्यार्थियों को किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार करते रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के बाहर उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे राज्य के विद्यार्थियों की मदद के लिए देश के 10 प्रमुख शहरों में जनसंपर्क अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। ये निर्णय राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये जनसंपर्क अधिकारी नई दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, अलीगढ़, भोपाल, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर में तैनात किए जाएंगे। क्षेत्रीय पहचान से संबंधित कोई भी मामला सामने आने पर ये जनसंपर्क अधिकारी जम्मू कश्मीर से जुड़े विद्यार्थियों के साथ समन्वय करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विभिन्न मामलों में 21,000 से अधिक भगोड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और पुलिस को अगले 2 महीनों में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिलेवार दल बनाने के निर्देश दिए। श्री रूपाणी ने इस काम में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए पुलिस महानिदेशक के स्तर पर अभियान की त्रैमासिक समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और इससे हरियाणा सरकार को नुकसान हुआ। श्री हुड्डा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में एक समारोह में श्री पुरी ने कहा कि भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा भू संपदा उद्योग में मौजूदा अनियमितताओं को दूर कर रहा है और इससे भू संपदा उद्योग में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने आज गिलोय को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया है। ये बेल मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। नई दिल्ली में आयोजित गिलोय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों को बढ़ावा देने और उनके प्रमाणीकरण की अवधारणा होनी चाहिए ताकि उन्हें विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पोषण मिशन से बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं को फायदा हो रहा है। ये अभियान केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो समन्वित बाल विकास सेवाओं के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है। पेश है हमारे औरंगाबाद संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
ICDS योजना दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इस योजना में 6 साल तक की आयु तक के बच्चों, गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं और 16 से 44 आयु की महिलाओं को लक्षित किया जाता है। लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करना इस योजना का लक्ष्य है। उस्मानाबाद शहर के आंगनवाड़ी केंद्र में इस योजना के लाभार्थियों में से एक अफसाना समीर शेख ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र से पौष्टिक भोजन पाने के कारण उनका बेटा स्वस्थ हो गया है।
आंगनवाड़ी से मेरे बच्चों को महीने में से 2 बार आहार मिलता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुई है और उनकी हाइट और उनके बॉडी में भी सुधार हुई।
माँ और बच्चों के पौष्टिक विकास के लिए ICDS एक उत्कृष्ट योजना है और इसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र में प्रभावशाली हुआ है। इस कारण राज्य में बच्चों के बीच मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाली बच्चों की संख्या में कमी आई है। रमेश जायवाए, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व वाली नई सरकार और हाल ही में सत्ता से हटाए गए रानिल विक्रमसिंघे के समर्थक सांसदों के बीच आज झड़पें हुईं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये झड़पें संसद में राजपक्ष के उस वक्तव्य के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने देश में उत्पन्न मुश्किल दौर में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
संसद की शुरुआत में सभापति ने किसी पक्ष को सरकार और विपक्ष का दर्जा देने से इनकार किया। राजपक्षे ने अपने भाषण में बढ़ती महंगाई, व्यापार समझौतों और राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया और कहा कि इससे निपटने के लिए राष्ट्रपति को उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना पड़ा। उन्होंने इससे निपटने के लिए आम चुनाव की वकालत की। दूसरी ओर विक्रमसिंघे का पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ा रहा, जिससे सदन बाधित रहा और उसे अगले सप्ताह तक स्थगित करना पड़ा। इसके पहले राष्ट्रपति सिरिसेना ने देर रात कल संसद द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव को ये कहकर ने कर दिया था कि वो संसदीय प्रणाली के अनुसार नहीं था। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
कोलंबो प्रोसेस यानी श्रमिकों को अन्य देशों में भेजने के क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया के वरिष्ठ अधिकारियों की 5वीं बैठक आज काठमांडू में शुरू हुई। बैठक में भारत सहित 12 सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी आपसी हित के मुद्दों, प्रवासी श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के काउंटी शहर पैराडाइज में जंगल में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 59 हो गई है। अधिकारियों ने 130 लापता लोगों की सूची जारी की है। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि पिछले सप्ताह भड़की आग में यह शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। ICC महिला विश्व कप क्रिकेट के 2020 मुकाबले में भारत आज आयरलैंड के साथ अपना तीसरा मैच खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने ग्रुप के पहले दोनों मैच जीत चुकी है। पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 34 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया। भारत अभी पूल बी की 5 टीमों में दूसरे स्थान पर है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हिमा दास को भारत में यूनिसेफ का युवा राजदूत नियुक्त किया गया है। हिमा ने इस साल जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 400 मीटर की स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक और 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से विभाजित कर नया झारखंड राज्य बनाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आशीष कुंद्रा को SB शशांक के स्थान पर मिजोरम का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में हिस्सा लिया। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान गज और तेज हो गया है। इसके आज शाम तक तमिलनाडु के नागपट्टिनम में पहुंचने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के बाहर उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की मदद के लिए 10 प्रमुख शहरों में जनसंपर्क अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। श्रीलंका की संसद में सदस्यों के बीच झड़पें हुई हैं। अध्यक्ष बिना किसी घोषणा के सदन से बाहर चले गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।